समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ताकत और मोहब्बत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मगर मुझे लगता है कि ताकत की जरूरत तभी महसूस होती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना सब कुछ हासिल करने के लिए तो सिर्फ प्रेम ही काफी है। छोटी सी जिंदगी और उसमें भी लड़ाई झगड़े नफरत करने को कहां से वक्त निकाल लेते हैं लोग, जबकि यहां तो प्यार के लिए भी समय कम मालूम होता है। प्यार मोहब्बत के इसी पैगाम के साथ आगाज करते हैं FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। साथ हूं आपके मैं नईम अख्तर और आज है मेरे साथ पहली बार आज सवेरे में शगुन चोपड़ा। शगुन कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूं।
Very warm welcome to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani Network. We bring you our ever exciting daily news magazine program, Aaj Savere, wherein over the next half an hour we will bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 7th of June.
Right.
So let's begin with the headlines first.
Acha, chaliye, main shuruaat karti hoon.
Bilkul.
केरल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता बिनॉय बिस्वाम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता एलामारम करीम और केसीएम पार्टी के नेता जोस के मणि का कार्यकाल 1 जुलाई को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 1 सीट के उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। ये सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई है। केरल और महाराष्ट्र के लिए नामांकन इस महीने की 13 तारीख तक भरे जा सकते हैं। मतदान 25 जून को कराया जाएगा। इस बीच राज्यसभा के 9 सदस्य हाल ही में हुए आम चुनाव में जीत गए हैं। इनमें असम से सर्बानंद सोनोवाल और कामाख्या प्रसाद तासा, बिहार से विवेक ठाकुर और मीसा भारती, हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव और राजस्थान से KC वेणुगोपाल शामिल हैं।
Senior Congress leader Rahul Gandhi has demanded a joint parliamentary committee JPC investigation into the stock market crash of 4th of June. Addressing media at party headquarters in New Delhi yesterday, Mr. Gandhi said the retail investors have lost 30 lakh crore rupees due to the market crash. The Congress leader sought to know why Prime Minister and Home Minister gave specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market. Meanwhile, BJP refuted the claims made by Congress. Briefing media in New Delhi, senior BJP leader Piyush Goyal alleged that Rahul Gandhi is trying to deceive market investors. Mr. Goyal claimed that people have gained even during the election results day. He further added that foreigners have incurred losses while Indian investors have benefited. He said that when the UPA government was in power 10 years ago, India's market capital at that time was 67 lakh crore rupees, and today the market capital has increased to 415 lakh crore rupees.
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार के गठन की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में होगी।
The Calcutta High Court has ordered that the central and state government have to jointly work to stop post-poll violence in West Bengal. A division bench of Justices Kaushik Chand and Apoorv Sinha Rai was hearing a public interest litigation on the issue yesterday. The PIL was filed by an association of lawyers in the court after 11 people have lost their lives in the post-poll violence in the state. The court ordered that if the state police fail to stop, then the central forces can intervene. Though state government has denied any case of post-poll violence, the High Court said that it may order central forces to stay for next 5 years if post-poll violence is not controlled. The court issued directive that Director General of Police have to take complaints through email and that can be channeled to respective police station. Court has ordered that state police has to list the FIRs registered in this regard in its website.
इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने आगे की रणनीति तैयार करने के लिए नई दिल्ली में बैठकें की। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर हुई। इस अवसर पर श्री खड़गे ने कहा कि जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये श्री मोदी के लिए भारी राजनीतिक क्षति और नैतिक हार है।
The India Meteorological Department, IMD, has issued yellow alert warning for rainfall, thunderstorms and lightning over many parts of country, including central and southern regions for the next 4 days. The IMD said southwest monsoon has further advanced into some parts of central Arabian Sea, Karnataka, Maharashtra, Telangana, coastal Andhra Pradesh and most parts of Bay of Bengal. Light to moderate rainfall accompanied by thunderstorm and lightning is expected over Konkan, Goa, Maharashtra, Marathwada, Saurashtra, Kutch, coastal Andhra Pradesh, Yanam, Rayalaseema, Telangana and Karnataka during the next 4 days. Widespread rainfall accompanied with thunderstorms and lightning is also likely over northeast region, West Bengal and Sikkim during the same period. Rainfall and thunderstorms are likely at a few places over northwest India today. The weather department said that similar conditions are also likely to occur over Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand for the next 2 to 3 days. On heat wave, IMD said that severe heat wave is likely to prevail over some parts of Uttar Pradesh till Monday. Heat wave conditions are very likely in Madhya Pradesh, Jharkhand, Punjab, Haryana, Bihar and Odisha till the next 2 to 3 days. Hot and humid weather is likely to prevail over isolated pockets of Bihar, Jharkhand and Gangetic West Bengal. It further forecasts that the conditions are favourable for further advancement of southwest monsoon into some more parts of South Chhattisgarh, South Odisha and remaining parts of Bay of Bengal during the next 3 to 4 days. Meanwhile, IMD has predicted dust storms and thunderstorm for the next few days in Delhi.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि नीट UG की कट ऑफ में वृद्धि, परीक्षा की प्रतिस्पर्धी प्रकृति और इस वर्ष उम्मीदवारों के उच्च प्रदर्शन मानकों को दर्शाती है। NTA ने नीट UG के परिणामों के संबंध में उम्मीदवारों के उठाए हालिया प्रश्नों के संदर्भ में ये स्पष्टीकरण जारी किया। एक खबर ओडिशा से है। ओडिशा में हाथियों की संख्या 2017 के मुकाबले इस साल 2098 हो गई है। इस साल हाथियों की संख्या में 122 की बढ़ोतरी हुई है। हाथियों की गणना के लिए राज्यभर में 1905 गणना इकाइयों में 1214 मचान बनाए गए थे। इस कार्य के लिए 5700 से अधिक कर्मियों को लगाया गया था।
Moving on to some international news, in Sudan, at least 150 people were killed and 200 injured in an attack by rebel paramilitary Rapid Support Forces, RSF, at Wad al-Nura village in the central Al Jazeera state. According to local officials and witnesses, over 40 armed vehicles stormed the village, unleashed heavy weaponry on its inhabitants, killed and injured civilians, including children and women. UNICEF said 35 children were killed in the attack, with more than 20 others injured. Sudan's military government has called for international condemnation of the Wad al-Nura attack. More than 15,000 people are estimated to have been killed since the conflict started in April 2023 across the country.
खेलों की तरफ रुख करें तो जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं ICC T20 विश्व कप में अमरीका ने पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को 5 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए। अमरीका ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बराबर कर लिया और सुपर ओवर में मुकाबले में जीत हासिल की।
So continuing with the World Cup cricket, the ICC Men's T20 World Cup, in another group match, Scotland defeated Namibia by 5 wickets at Kensington Oval in Bridgeton, Barbados. Chasing victory target of 156, Scotland overhauled the target with 5 wickets in hand and 9 balls to spare. Earlier, Namibia scored 155 for 9 in stipulated 20 overs. Skipper Gerard Erasmus scored highest 52 of 31 balls for Namibia, while Richie Berrington contributed unbeaten 47 of 35 for Scotland.
और आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें। पहले शगुन, आप चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की कुछ खबरें शेयर कर लीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई एम गोइंग टू बिगिन विद चेन्नई।
जी,
द मद्रास हाईकोर्ट हैज रीस्ट्रेन्ड द सेंटर फ्रॉम टेकिंग अ फाइनल डिसीजन ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्टेन डॉग ब्रीड्स एज फेरोशियस एंड डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ व्हिच कुड पोटेंशियली लीड टू अ बैन ऑन दीज ब्रीड्स अक्रॉस द कंट्री। However, Justice Anita Sumanth allowed the government to gather feedback and objections from stakeholders regarding the classification process. The interim order comes after the court halted the implementation of a notification issued by the union government in March, which aimed to prohibit the breeding of specific dog varieties in India. The breeds under scrutiny include Pit Bull Terrier, Tosa Inu, American Staffordshire Terrier, American Bulldog, to name a few. The petitioner urged the government to restart the entire process by forming a new committee disregarding the earlier notification that had been stayed by the court. Continuing with Chennai only, IIT Madras has jumped 58 places to 227th rank, while Anna University has jumped 44 places to 383rd rank in the QS World University Ranking 2025. Both technical institutions have improved their score in citations per faculty, international research network, and sustainability parameters. So I'm going to continue with Bengaluru.
Ji.
The army joined hands with Bruhat Bengaluru Mahanagar Palikate to take up conservation of the military station in Bengaluru. The NGO called Grow Billion Trees had organized the program to plant over 2,000 saplings in Banaswari Military Station in Bengaluru on the occasion of World Environment Day. The army personnel and their families participated in the event. Prasad Rao has taken over as the Chief General Manager of NABARD Karnataka Region. He was heading NABARD Mizoram Regional Office earlier. He has also served earlier in Andhra Pradesh, Haryana, Mumbai and Maharashtra in various capacities. Moving on to Hyderabad, the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, EME, inaugurated EME Annual Sailing Regatta last evening with MCEME and Colonial COMDT Corps of EME, Commodore of the EME Sailing Association, Lieutenant General Neeraj Vashne, delivering the opening address. This event brings together sailors from various units of the Indian Army, showcasing their dedication, training and competitive spirit. It also witnesses participants from Pan India. The participants have undergone rigorous training to prepare for this event. The regatta also serves as a platform to select talented sailors for further training at Army Yachting Node and participation in national and international events. Lieutenant General Neeraj Vashne has emphasized the importance of such events in enhancing the physical and mental resilience of the sailors and highlighted the role of sailing in building teamwork and strategic thinking besides perseverance, which are essential qualities for service personnel. And now, Naeem, let's move on to other metro cities.
जी, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की खबरें मेरे पास हैं। शुरुआत करती हूं दिल्ली से। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ से कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है और वो अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त पानी छोड़ने को तैयार हैं। दिल्ली पुलिस ने कल एक अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इनके पास से अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की प्रतिबंधित कैंसर की दवाएं बरामद की गई हैं। पुलिस ने इस संबंध में चार लोगों को लाल किला इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बरामद की गई प्रतिबंधित दवाओं की कीमत 1.5 करोड़ रूपये से अधिक है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मिस्र, तुर्की और सीरिया के पासपोर्ट बरामद किये हैं। दिल्ली नगर निगम 1 जुलाई से चेक के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार नहीं करेगा। निगम के अनुसार संपत्ति करदाता अब आसानी से यूपीआई, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी भी ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से डिजिटल रूप से संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। निगम ने बताया कि डिजिटल भुगतान न सिर्फ समय पर भुगतान और रसीद जारी करना सुनिश्चित करेगा बल्कि व्यापार करने में आसानी होगी। दिल्ली नगर निगम सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वो इस महीने की 30 तारीख से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी बकाया संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। निगम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति एक मुश्त संपत्ति कर का भुगतान करके 10% की छूट प्राप्त कर सकता है। सभी संपत्ति करदाता दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉगिन कर अपना बकाया संपत्ति कर जमा करवा सकते हैं। और दिल्ली से ही एक और खबर है। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उन्हें चिकित्सकीय आधार पर 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो न्यायिक हिरासत के दौरान श्री केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखें। उनकी नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। और अब कुछ खबरें मुंबई से हैं शगुन मेरे पास। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैंस ने कल मुंबई के राजभवन में आयोजित एक अलंकरण समारोह में 115 पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए। 2021 में स्वतंत्रता दिवस और 2022 में गणतंत्र दिवस पर घोषित पुलिस पदक दिए गए। 30 पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया जबकि 7 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर 78 पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिए गए। मुंबई के पवई इलाके में जय भीमनगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पथराव में पुलिस अधिकारी और मजदूर घायल हो गए। कल सुबह 10:30 बजे बृहन मुंबई नगर पालिका प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू की गई। बीएमसी विभाग ने इस इलाके में पहले ही तोड़फोड़ का नोटिस जारी कर दिया था। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। कार्रवाई के दौरान भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया और अचानक पथराव शुरू हो गया। बीएमसी ने अपने अधिकारियों को गड्ढों से जुड़ी शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निपटारा करने का निर्देश दिया है। बीएमसी अधिकारियों ने कल सड़कों से जुड़े प्री मॉनसून कार्यों का जायजा लिया। बीएमसी ने इसके लिए सभी मशीनरी और सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बीएमसी ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बारिश के मौसम में गड्ढों के कारण नागरिकों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। बीएमसी ने चल रहे सड़क कार्यों को 10 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। और अब एक खबर कोलकाता से। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कल आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा में 11 लोगों की मौत के बाद वकीलों के एक संगठन ने अदालत में एक जनहित याचिका दायर की थी। अदालत ने आदेश दिया कि अगर राज्य पुलिस इसे रोकने में विफल रहती है तो केंद्रीय बल हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि राज्य सरकार ने चुनाव के बाद हिंसा के किसी भी मामले से इनकार किया है लेकिन उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि केंद्रीय बलों को अगले 5 साल तक बंगाल में रहने का आदेश दिया जा सकता है। पुलिस महानिदेशक को ईमेल के जरिए शिकायतें लेनी होंगी और उन्हें संबंधित पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया जा सकता है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि राज्य पुलिस को इस संबंध में दर्ज की गई FIR को अपनी वेबसाइट पर सूचीबद्ध करना होगा। और अब महानगरों के समाचारों के बाद महानगरों के मौसम का हालचाल अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं शगुन। हालांकि आपने मौसम के बारे में पूरे भारत भर से हमारे श्रोताओं को पहले यह खबर दे दी है लेकिन अभी महानगरों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में धूल भरी आंधी और गर्म हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम क्या कह रहा है शगुन?
जी, सो चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 25 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। Bengaluru is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers, as we have already told our listeners. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees Celsius. Hyderabad is also expected to have generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees Celsius and a maximum of 35 degrees Celsius.
जी शगुन, और आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7 जून है, लेकिन आज के अलावा भी इतिहास में 500 बार 7 जून आ चुका है। तो 7 जून को कब कब किस किस साल में क्या क्या खास बात हुई उसमें से कुछ चीजों पर नजर डाल लेते हैं और अपने श्रोताओं तक उनको भी पहुंचाते हैं। 7 जून यानी आज ही के दिन 1539 में बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया। 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया।
In 1955, Jawaharlal Nehru, the Indian Prime Minister, visited USSR.
1989 में भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया।
In 1989, Sheetal Pandya set up a world record at the age of 5 years.
1995 में Norman Thagard अंतरिक्ष की कक्षा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अमरीकी अंतरिक्ष यात्री बने।
In 1996, squadron leader Sanjay Thapar of IAF, he became the first Indian to jump from a parachute and hoist the national flag at the North Pole.
1998 में स्पेन के कार्लोस मोया ने फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता।
In 1997, Mahesh Bhupathi becomes the first Indian to win a Grand Slam title when he and Japan's Rika Hiraki claimed the mixed doubles. And in 1998, India emerges World Bank's single largest borrower with cumulative loans of $44 billion.
जी, ये तो 7 जून के इतिहास की बात हुई। अब 7 जून से ही जुड़ी हुई उन कुछ शख्सियतों को याद कर लेते हैं जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। तो शुरुआत करते हैं नटराज रामकृष्ण के जिक्र के साथ जिनकी आज पुण्यतिथि है। 7 जून 2011 को उनका निधन हुआ था और 21 मार्च 1923 को उनका जन्म हुआ था। वो भारत के एक नृत्य गुरु थे, आंध्र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष भी रहे, एक विद्वान और संगीतज्ञ भी थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश और दुनिया भर में शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने 40 से ज्यादा किताबें लिखी जिनमें से कई को बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया। नृत्य की कला में नटराज रामकृष्णन के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही नटराज रामकृष्ण को मराठा के तत्कालीन शासक ने नागपुर में नटराज की उपाधि दी थी। 21 जनवरी 2011 को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से उन्हें सम्मानित किया गया था।
सो टुडे ऑन द 7th ऑफ जून वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ प्रिंस रॉजर्स नेल्सन। ही इज अ वेरी वेरी फेमस म्यूजिशियन एंड ही वाज एक्चुअली एन अमेरिकन सिंगर, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, सॉन्ग राइटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर एंड एक्टर। वेरी वेरी टैलेंटेड मैन, यू नो।
या
सो ही इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ हिज जनरेशन। He was known for his flamboyant persona, his wide vocal range, which included a far-reaching falsetto and high-pitched screams, and his skill as a multi-instrumentalist, often preferring to play all or most of the instruments on his recordings. I mean, it takes a lot of practice, you know, to learn one instrument. Prince, he was a multi-instrumentalist, and he used to play in his, I mean, he used to record his own instrument, the sounds of all the instruments in his songs by himself.
Bahumukhi pratibha ke malik.
Exactly.
जी.
His music incorporated a wide variety of styles, including funk, R&B, rock, new wave, soul, pop, jazz, blues and hip-hop, and the list goes on and on. Mm-hmm. He produced his albums himself, pioneering the Minneapolis sound. He was born and raised in actually Minneapolis. Prince signed a record deal with Warner Brothers. So let's hear a very, very famous track from Prince. The name of the track is Purple Rain.
I never meant to call you any sorrow. I never meant to call you.
और आज ही जैसे कि शगुन ने भी थोड़ा सा हिंट दिया था हमें, 7 जून के इतिहास के वक्त के महेश भूपति का आज जन्मदिन है। 7 जून 1974 को कर्नाटक के बैंगलोर में उनका जन्म हुआ था और बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वो कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं।
एग्जैक्टली
टेनिस में उन्होंने जो अपना नाम बनाया है वो भारत के लिए ही नहीं बल्कि टेनिस के लिए भी अपने आप में एक शानदार
है ना। डेफिनेटली
टेनिस में लिएंडर पेस के साथ युगल मुकाबलों में शानदार सफलता अर्जित की महेश भूपति ने। इनका पूरा नाम महेश श्रीनिवास भूपति है। भूपति को 1996 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया जो खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और 26 मार्च 2001 को लिएंडर पेस के साथ भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान देकर भी सम्मानित किया था जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
So continuing with this only, and we are today, it's the death anniversary of Kenneth Taylor Perkins. He was born on May 16, 1890, and he was an American author of Western mystery and adventure and horror stories. So from 1920 until his death in 1951, Perkins wrote plays, novels, radio and television scripts, and scores of short stories. In addition to publishing under his real name, Perkins used several pseudonyms, with stories appearing by Randolph Hale, King Phillips, Kim Knight, Charles Dustin. Kenneth Taylor Perkins was born, as I told you, on May 16, and he was born actually in the South Indian state of Madras in Kodaikanal. And his parents actually were posted as missionaries with the Madura Mission, American Board of Commissioners for Foreign Missions. His father, James Coffin Perkins, graduated from the University of California. And on June 28, James married Charlotte John Taylor. They met when newly ordained James was brought in as substitute pastor at Faith Church, where Charlotte attended. Shortly after the wedding, they sailed for India. So he has been in India. He was actually born in India, as I told you, Kenneth Perkins.
Mm-hmm.
Moving on to Alladi Ramakrishnan, he was born on 9th August, and we are actually today celebrating, and you know, we are remembering him basically.
Mm-hmm.
He passed in 2008.
Today is his death anniversary.
Yes, exactly.
Right.
He was actually an Indian physicist and the founder of the Institute of Mathematical Sciences in Chennai. He made contributions to the process, particle physics, algebra of matrices, special theory of relativity in quantum mechanics. And he had his early education in PS High School, Madras.
और एक और बहुत बड़ी हस्ती का नाम मेरे हाथ में है इस वक्त, 7 जून 1914 को जिनका जन्म हुआ था और आज उनकी जयंती है। नाम है उनका ख्वाजा अहमद अब्बास, जो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक थे। वो उन कुछ गिने चुने लेखकों में से थे जिन्होंने मोहब्बत, शांति और मानवता का पैगाम दिया। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अलीगढ़ ओपिनियन से अपने लिखने की शुरूआत की। उसके बाद ये लंबे समय तक एक संवाददाता और फिल्म समीक्षक रहे। उनका कॉलम भी आया करता था एक समाचार पत्र में, और उसके बाद वहीं रहते हुए उन्होंने अपनी लिखने की शुरुआत की। लिखने की शुरुआत करते हुए उन्होंने पहली पटकथा अपनी फिल्म नया संसार के लिए, और बाद में इसी नाम यानी नया संसार के नाम से ही उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोल ली, जिस कंपनी के तहत उन्होंने अनहोनी, राही, नीचा नगर और डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी जैसी कई फिल्में लिखी। राज कपूर के साथ उन्होंने एक लंबा रिश्ता निभाया। आवारा, श्री 420, जागते रहो, मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी उनकी कई सफल फिल्में लिखी गई। उन्होंने उनकी अपनी जिंदगी पर बनी हुई फिल्म थी मेरा नाम जोकर। और बस अब वक्त हो गया है कि अपने श्रोताओं से इजाजत ली जाए, तो नई मख्तर शगुन चोपड़ा को इजाजत दीजिए।
नमस्कार,
नमस्कार।